मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 22 अप्रैल 2016 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी के सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन साथी का नाम है रविंद्र कुमार जो सिवान बिहार से हैं। तो रविंद्र मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी कहा आज दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को सामान्यतया मुझे एक रूटीन में कुछ सूचनाएं देनी होती हैं, तो सबसे पहले मैं वे सूचनाएं आप तक प्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो यह कि आप जानते हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आता है, तो दो दिनों के लिए डेली ऑडियो गाइडेंस अवेलेबल नहीं होगा। और मंडे को भी जो आपको मिलेगा वो आपको मालूम है ऑडियो फॉर एक्सीलेंस के रूप में एक अलग से अलग तरीके का आपको ऑडियो प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि कैसे जीवन को समझा जाए, कैसे उसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, कैसे जीवन को ज्यादा खुशहाल बनाया जाए। तो इस तरह के ढेर सारे अलग अलग मुद्दे हैं जो हम लोग ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में डिस्कस करते हैं। और इस बार मंडे का जो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस होगा वो पिछले सप्ताह का ही जो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस था जिसमें हम एक्सीलेंस के बारे में बात कर रहे थे उसी का पार्ट सेकेंड एंड लास्ट पार्ट होगा। मित्रों लेकिन जो हमारे फर्स्ट बैच सेकेंड बैच और थर्ड बैच के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस उसी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि अब तक प्रोवाइड किया जाता रहा है। और साथ ही जो पेपर क्लिपिंग्स होते हैं वे कंटिन्यू होते हैं एक्सेप्ट संडे के। तो सैटरडे को भी आप सबको नॉलेज सेंटर पर पेपर क्लिपिंग्स अवेलेबल होंगे। और उसी के साथ ही हमेशा की तरह योजना और कुरुक्षेत्र इन दोनों पत्रिकाओं के एक एक आर्टिकल भी अवेलेबल होंगे। ये आर्टिकल हिंदी में भी अवेलेबल होंगे और इंग्लिश में भी अवेलेबल होंगे। और साथ ही मित्रों कल सैटरडे को आप लोगों को एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा, खासकर मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर वह प्रश्न तैयार किया जाता है। और वह आपको आप लोगों को इसलिए दिया जाता है कि आप लोग उस प्रश्न के उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कर सकें। मैं यहां पर एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि मेरे पास इस बीच में कुछ मेल आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि जिस तरह से सैटरडे को एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है उसी तरीके से डेली एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए। मित्रों मैं समझ सकता हूं आपकी इस मांग के पीछे आपकी अपनी जरूरतें हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही मुझे अव्यवहारिक सा लगता है। अगर सप्ताह में एक क्वेश्चन ही आप सॉल्व करने की कोशिश कर लें, उत्तर लिखने की कोशिश कर लें, तो मैं समझता हूं कि अपने आप में बड़ी बात होगी। जब मैं आपको रोज एक एक प्रश्न प्रोवाइड करूंगा तो मैं जानता हूं कि क्या हादसा होगा। हादसा ये होगा कि वह आप सबको बोझ लगने लगेगा। अगर आपने उसे अपने शेड्यूल में डाल भी लिया कि नहीं मुझे तो रोज इसका उत्तर लिखना ही है, तब भी आप उसके साथ उतनी मेहनत नहीं करेंगे और जो भी मन में आया लिख करके आप उसे टाल देंगे। खासकर जो इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं मुझे लगता है कि वे कभी कभी ही की जानी चाहिए और जब भी की जाएं तो पूरी तन्मयता के साथ की जानी चाहिए, पूरी गंभीरता के साथ की जानी चाहिए, ईमानदारी के साथ की जानी चाहिए। इसलिए मित्रों मैं माफी चाहूंगा कि मैं कुछ स्टूडेंट्स की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। आप लोग रिक्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके लिए क्या चीजें हितकर हो सकती हैं, कौन सी चीजें जरूरी हैं और मैं उसी तरह की चीजों को उपलब्ध कराने में विश्वास करता हूं। तो मित्रों इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो दोस्तों कुछ सूचनाओं के बाद अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। कल हम लोग परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे और मैं कुछ स्टूडेंट्स के मेल को पढ़ने के बाद जो महसूस किया मैंने कि नहीं, स्टूडेंट्स को मुझे बताना चाहिए कि यदि जीवन के किसी भी फील्ड में वो जाते हैं, चाहे वो सोशल वर्क और यहाँ तक कि आप सिविल सर्विस की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको असफलता मिलती है तो उसमें निराश होने की कोई भी बात नहीं होती है, क्योंकि ये खुद को परिवर्तित करने का काम है, दूसरों को परिवर्तित करने का काम है, और ये काम बहुत 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 अधिक कठिन होता है। इसके बारे में मैंने कल कुछ थोड़ी सी चर्चा की थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए मित्रों, मैं आज आप लोगों से व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहा हूं, और मैंने कल आप लोगों से वायदा किया था कि मेरे पास हमारे फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं राजवीर शर्मा, उनका मेल आया है। वो सिविल सर्विस के इंटरव्यू में अभी अपीयर हुए थे और उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बड़े खूबसूरत तरीके से, बहुत डिटेल में उन्होंने वे प्रश्न लिखकर मुझे भेजे हैं, तो मुझे लगा कि व्यक्तित्व के माध्यम से यदि ये प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखूं तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। फ्रेंड्स, ये जो व्यक्तित्व है ये बेसिकली क्या है? ये मूलतः परिवर्तन से ही जुड़ा हुआ मामला है, इसे आप समझने की प्लीज कोशिश करें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू के बाद लोगों को लगता है कि अब मेंस के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि अब उन्हें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। सच पूछे तो यह बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से जज नहीं पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो इंटरव्यू की तैयारी है वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तैयारी है। कंटिन्यूअस प्रोसेस की तैयारी इस तरीके से कि आप जो कुछ भी हैं, आपकी पर्सनालिटी में जो कुछ भी है, और पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें, इसमें सारी चीजें आती हैं। अपने समय के प्रति आपकी सतर्कता, अपने आसपास के वातावरण के प्रति आपकी जिज्ञासा, आपके सोचने समझने की मौलिकता, आपके मैनर्स, बातचीत करने का ढंग, भाषा का उच्चारण, आचरण, नैतिक मूल्य, इस तरह से ढेर सारी चीजें मिलकर के कहीं वो हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं। और सच पूछे तो इसमें जो व्यक्ति शब्द है उसी में तत्व है। मेरा जो तत्व है वो मेरा व्यक्तित्व है, आपका जो तत्व है वो आपका व्यक्तित्व है। इसलिए जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक दिन में व्यक्तित्व बन जाएगा, मुझे लगता है कि वो सही नहीं सोच रहे हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस दोनों ही मामले में है दोस्तों। एक तो ये है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए, अपनी एनालिसिस करनी चाहिए, और हमारे व्यक्तित्व में हमें जो लगता है कि ये गलत चीजें हैं, या दूसरों के जरिए भी हमें पता लगता है कि ये गलत चीजें हैं, हम उनसे छुटकारा पाएं और जो बेहतर चीजें होनी चाहिए वो लगातार हम उनमें अपने अंदर डालने की कोशिश करें, और हमारी यह कोशिश डेली होनी चाहिए, लगातार होती रहनी चाहिए, ताकि वो हमारे व्यक्तित्व में इस तरह से घुल मिल जाए जैसे कि दूध में पानी मिल जाता है या पानी में दूध मिल जाता है। इस तरह से नहीं रहना चाहिए जैसे कि पानी में तेल तैरता है, वो घुलता मिलता नहीं है, वो अलग से दिखाई देता है, क्योंकि अगर वो व्यक्तित्व में समाया नहीं, चाहे आप मैनर्स की बात कर लें, विनम्रता की बात कर लें, तो वो याद रखिए कि जो इंटरव्यू बोर्ड है वो उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। मित्रों, इस बार के ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में मैंने एक बात कही थी, आपको शायद वो वाक्य ध्यान में आए अभी मुझे सुनने के बाद। मैंने कहा था कि जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, उसका उसकी जो भूमिका होती है हमारे जीवन में, एक सीमा के बाद जाकर खत्म हो जाती है, रुक जाती है, बस खत्म। अब जो आगे आपको ले जाने का काम करेगा वो होगा आपका व्यक्तित्व, आपका कॉमन सेंस, आपका बिहेवियर, आपके सोचने समझने का तरीका, दूसरों के को जोड़कर काम कर लेने का ढंग, ये सारी चीजें जो व्यक्तित्व के अंग होते हैं वो जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर वहां कोई कृत्रिमता आती है तो इंटरव्यू बोर्ड उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। और मैं आपको बताऊं मित्रों कि ये जो व्यक्तित्व है इसकी जरूरत केवल सिविल सर्वेंट बनने के बाद ही नहीं पड़ती, हर को पड़ती है। चाहे वो कुछ भी काम क्यों ना कर रहा हो, व्यक्तित्व बहुत अधिक मायने रखता है। व्यक्तित्व का मतलब देखने में अच्छा लगना नहीं है, बल्कि सामने वाले के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है। इसीलिए व्यक्तित्व एक ऐसा तत्व है जो हरेक के साथ जुड़ा हुआ है, और चाहे जीवन के जिस क्षेत्र में भी वो जो कुछ भी काम कर रहा हो उसमें व्यक्तित्व उसे सफल बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मित्रों, इसलिए आप लोग ऐसा बिल्कुल मत समझें कि चूंकि आप सिविल सर्विस दे रहे हैं इसीलिए व्यक्तित्व की जरूरत है, और यदि आप सिविल सर्विस की परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो व्यक्तित्व की जरूरत ही नहीं है। ऐसा सोचना मैं समझता हूं कि शायद अपने साथ ही कहीं ना कहीं नाइंसाफी करना है। इसलिए मित्रों जो सिविल सर्विस जो सिविल सर्वेंट जिनको सरकार बनाना चाहती है, जिनके हाथ में इस देश और समाज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है, वो पहले उनके व्यक्तित्व को जांचने और परखने की कोशिश करती है। तो मित्रों अभी जो मैंने एक बात आप लोगों से कही कुल मिलाकर वह यह थी कि यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके लिए लगातार कोशिश होती रहनी चाहिए। जैसे कि रिमझिम जब बारिश होती है तो वो जो पानी की बूंदें होती हैं जमीन के ज्यादा गहरे तक पहुंच पाती हैं, मिट्टी के एक एक कण में वो समा जाती हैं। ठीक इसी तरह से अपने व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश लगातार रिमझिम बारिश की तरह होती रहनी चाहिए, ताकि वो हमारे एक एक रोए में, हमारे चेतना के एक एक अणु में समाकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो मित्रों अब मैं आता हूं उस फॉर्मल इंटरव्यू पर जो राजीव शर्मा ने मुझे लिखकर राजवीर शर्मा ने मुझे लिखकर भेजे हैं। यह बात मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू को लेकर के दिमाग में नो डाउट की बहुत ज्यादा अतिरिक्त संवेदनशीलता समाई रहती है। हम सब उसके विक्टिम रहे हैं, लगता है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, क्या न कहीं ऐसा न हो कि पूछ लिया जाए और हम बता ना पाए। दोस्तों वो केवल एक माध्यम भर है, और यदि आप अपने जनरल स्टडीज के प्रति अवेयर हैं, और यदि शब्द मुझे यहां से हटा लेना चाहिए क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं कि यदि किसी स्टूडेंट्स ने मेंस क्वालिफाई किया है तो वो जनरल जो जनरल स्टडीज हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, उनके प्रति अवेयर होने के सिवाय उनके पास वहां तक पहुंचने का दूसरा कोई साधन है ही नहीं, कोई माध्यम ही नहीं है। अगर वो अपने करंट अफेयर्स के प्रति अवेयर नहीं है तो मेंस ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार आप मान करके चलिए कि आप की तैयारी इंटरव्यू के लिए लगातार हो ही रही है। जहां तक व्यक्ति के तत्व की बात है, जिसे मैं सेंस ऑफ पर्सनालिटी कहता हूं, तो डेफिनेटली वो आपको धीरे 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 अपने अंदर कल्टीवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों तो आप इंटरव्यू के प्रश्नों को लेकर के अपने दिमाग में कोई बहुत ज्यादा तनाव बनाकर न रखें। मैं अब आपको बताता हूं कि कितने सरल और सहज तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको ये सुनकर और भी ज्यादा शायद सुखद एहसास होगा कि जो भी प्रश्न अभी मैं वो प्रश्न पढ़ रहा हूं जो राजवीर शर्मा से पूछे गए थे, तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग सभी प्रश्नों के बारे में आप भी जानते हैं। आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि अरे बाप रे ये क्या अटपटा सा पूछ लिया गया, ये कहां से पूछ लिया गया, ये क्यों पूछ लिया गया, इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं। प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित होते हैं, और स्वाभाविक तौर पर वहां जो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट होता है, जो इंटरव्यू में आपके लिए नंबर लेकर के आएगा, वो है आपके एक्सप्रेशन का तरीका, कि आप उसे कितने खूबसूरत तरीके से वहां बोर्ड के सामने रख पाते हैं। तो मित्रों जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो राजवीर शर्मा ने लिखा है कि जब इस यहां फोर्थ बैच के लिए क्लासेस ज्वाइन करने आए थे तो इन्होंने अलग से इनको मैंने 20 मिनट का समय दिया था इंटरव्यू के बारे में बताने के लिए, तो इसके लिए उन्होंने दो तीन बार बहुत ज्यादा अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया है। तो राजवीर इसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उन 20 मिनट के दिए हुए समय को इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए उसके प्रति आभार व्यक्त किया है, और ये व्यक्तित्व का एक सबसे पहला हिस्सा होता है। देखिए यहां से शुरू होता है व्यक्तित्व, यहां से पता लगने लगता है कि भले उस 20 मिनट में मैंने ऐसे कोई भी बात नहीं की हो जो उनके इस इंटरव्यू में सीधे सीधे काम आई हो, लेकिन फिर भी एक आभार व्यक्त किया जा रहा है, यहां से व्यक्तित्व की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों खैर मैं व्यक्तित्व को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं यहां केवल उनके द्वारा जो प्रश्न मुझे भेजे गए हैं मैं उन्हीं की चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि जो मिस्टर डेविड हैं उनका बोर्ड था और 30 मिनट तक लगभग इंटरव्यू चला, और उनके हिसाब से उस 30 मिनट में लगभग उनसे 30 प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो मैं अब आपको प्रश्न पढ़ करके सुनाता हूं। दोस्तों यहां आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको अभी और भी बहुत से इंटरव्यूज के बारे में पढ़ने को मिलेंगे, तो वहां आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखना कि कुछ जो शुरुआत होती है इंटरव्यू बोर्ड में, तो शुरुआत के जो प्रश्न होते हैं वो उनके जो कैंडिडेट होता है उसके निहायत ही निजी जीवन से रिलेटेड होते हैं। वो कहां का रहने वाला है, किस स्टेट का, कौन सी नौकरी कर रहा है, किन किन कॉलेज में उसने पढ़ाई की है, कौन कौन से विषय उसने लिए थे, कौन सी वो अभी नौकरी कर रहा है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शनल पेपर्स उसके कौन कौन से हैं, तो याद रखिए कि उनको आप जनरलाइज मत कर दीजिएगा कि आपसे भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो आपके अपने बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं और फिर वो करंट अफेयर्स पर चले जाते हैं। हाँ, जो करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो डेफिनेटली कॉमन होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि करंट अफेयर्स में से साइंस पर वो आ गए, जैसे कि अभी एक आप कह लीजिए कि जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों की बात हो रही थी, ग्रेविटेशनल वेव्स की बात हो रही थी, अगर वो ग्रेविटेशनल वेव्स को आधार बना करके बहुत ही गहरे साइंस में चले गए, तो मान करके चले कि इस जो स्टूडेंट है ये फिजिक्स का स्टूडेंट है, या तो उसने फिजिक्स एमएससी किया है या फिजिक्स उसने ऑप्शनल पेपर्स के रूप में लिया है, इसलिए उससे इतने गहरे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए ऐसे प्रश्नों को लेकर के बहुत ज्यादा तनाव में भी आने की आपको जरूरत नहीं है। तो मित्रों, देखिए कि उनसे कौन से प्रश्न पूछे गए 30 मिनट में। जो उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्होंने पहला पूछा है कि मिस्टर राजीव, यू आर फ्रॉम आगरा, कि आप आगरा से हैं, तो उन्होंने जवाब दिया होगा हां। व्हाट इज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आगरा, आगरा का क्या ऐतिहासिक महत्व है। व्हाट इज इन फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में क्या है। वेयर इज खानबा एंड व्हाई इट्स फेमस, खानबा कहां है और वह क्यों प्रसिद्ध है। व्हाई यू वांटेड टू बिकम इन सिविल सर्विसेज एज यू आर वर्किंग इन दिल्ली मेट्रो, तुम पहले से ही दिल्ली मेट्रो में काम कर रहे हो तो फिर तुम सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो। व्हाट काइंड ऑफ पावर यू वांट, तुम किस तरीके की के अधिकार चाहते हो, शक्ति चाहते हो। ओके, फॉर सर्विसेज यू आर गिविंग योर सर्विस इन दिल्ली मेट्रो, इज इट नॉट ए सर्विस, आप ऑलरेडी दिल्ली मेट्रो में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो क्या आप मानते हैं कि ये सेवा नहीं है। यू हैव नो ज्योग्राफी इन ग्रेजुएशन, व्हाई यू ऑप्टेड इट एज ऑप्शनल, ज्योग्राफी में जबकि आपके ग्रेजुएशन में जबकि आपका भूगोल विषय नहीं था, इसके बावजूद आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भूगोल क्यों लिया। हाउ यू सी 22 मंथ्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार के 22 महीनों को आप किस रूप में देखते हैं। व्हाट इज डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया क्या है। व्हाई स्मार्ट सिटी ओनली, व्हाई नॉट स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी ही क्यों, स्मार्ट गांव क्यों नहीं। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, एज यू आर फ्रॉम विलेज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजर्स, चूंकि आप गांव से हैं तो गांव की क्या गांव वालों की क्या समस्याएं हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की क्या समस्याएं हैं। हाउ कैन यू हेल्प देम, आप उनकी मदद कैसे कर सकेंगे। व्हाट आर जीएम सीड एंड हाउ कैन दे हेल्प फार्मर्स, जीएम फसल है जिसको हम जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स कहते हैं, वो क्या है और उससे किसानों को कैसे मदद मिल सकती है। व्हाट इज किसान बीमा योजना, इज इट हेल्पफुल, किसान बीमा योजना क्या है और क्या यह सहायक हो सकती, इससे मदद मिल सकती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये भी कृषि से संबंधित है कि जो केमिकल जो रासायनिक खाद हैं उनके क्या नुकसान होते हैं। व्हाई नीड कोटेड यूरिया यूज्ड, कोटेड यूरिया जो नीम से कोटेड यूरिया है होते हैं उनको यूज करने से क्या फायदा होगा। हाउ कैन इरिगेशन प्रॉब्लम सॉल्व, सिंचाई की समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। रिसेंटली चाइना इज वर्किंग इन पोक, व्हाट इंडिया कैन डू, चाइना अभी पोक में काम कर रही पाकिस्तान के साथ मिलकर के, मालूम है आपको, उसको भारत कैसे, उसमें भारत क्या कर सकता है। व्हाई चाइना इज इंटरेस्टेड इन पाक, चाइना पाकिस्तान से दोस्ती क्यों बढ़ाना चाहता है। इन इंडो पाक रिलेशंस रोल ऑफ पॉलिटिशियन, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो राजनेता हैं उनका क्या रोल हो सकता है। हाउ इंडो पाक रिलेशंस इंप्रूव, भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे डेवलप हो सकते हैं। कैन इंडिया लिव टेररिज्म इशू, क्या भारत जो टेररिज्म का जो इशू है इसको छोड़कर चल सकता है, इसकी अनदेखी कर सकता है। हाउ कैन टेररिज्म बी स्टॉप, टेररिज्म को कैसे रोका जा सकता है। हाउ यू सी कोऑर्डिनेशन ऑफ पुलिस डिफेंस आईबी एंड रॉ, पुलिस में, सेना में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में और रॉ में आपस में समन्वय को कैसे स्थापित किया जा सकता है, उसकी क्या स्थिति है, उसे आप किस रूप में देखते हैं। व्हाट आर फेलियर ऑफ रॉ एंड आईबी, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो, कि कौन कौन से कमियां रही हैं या फेलियर्स असफलताएं रही हैं, आर दे वर्किंग प्रॉपर, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, इज नीड टू मोर स्ट्रांग आई बी एंड रा, क्या आप चाहते हैं कि हम क्या हमें रा और आई बी को अधिक मजबूत बनाना चाहिए, व्हाट आर योर हॉबीज, तुम्हारी हॉबीज क्या हैं, वेयर You have traveled, तुम कहाँ कहाँ, आप कहाँ कहाँ आपने travel किया है, importance places of Himachal and importance of tourism if you feel. Tourism की क्या important है, importance है, Himachal की क्या importance है अगर आपको ऐसा लगता है तो. बस ये उन्होंने लिखा है, सर दैट इट्स इंपॉर्टेंट. तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया है कि आप इससे इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स को अगर बताएंगे तो मैं बहुत आभारी रहूंगा. तो मित्रों, मैंने ये आपको क्वेश्चंस कुछ बताए हैं, इसमें थोड़ा सा काफी वक्त लगा है लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने 30 क्वेश्चंस कॉइंस करके भेजे हैं और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के बहुत काम की चीजें होंगी. और आपने देखा कि इसमें से कोई भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं लगा होगा जो बहुत उटपटांग हो, बहुत अनजाना सा लगे. सारे क्वेश्चंस लगातार चर्चा में रहे हैं, अखबारों में आते रहे, न्यूज में आते रहे और हम डेली ऑडियो गाइडेंस में भी देखा होगा कि हम लोग उस पर डिस्कस करते रहे. और मुझे लगता है मित्रों कि इस डेली ऑडियो गाइडेंस की सबसे बड़ी ताकत केवल यही है कि अखबारों में जिन चीजों को आप मूक तरीके से पढ़ते हैं उसे यहां हम डिस्कशंस के फॉर्म में आपस में एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से जान लेते हैं. तो मित्रों, इसे आप चाहे लाइफ मैनेजमेंट के हिस्से का हिस्सा मान लीजिए या आप AIR न्यूज का हिस्सा मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहें. तो अब मैं आता हूं नेक्स्ट कल के AIR न्यूज पर. मित्रों, कल के AIR न्यूज में दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं परीक्षा की दृष्टि से. पहला तो आपको मालूम ही है कि जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसकी जो बेंच थी उसने उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसे रद्द कर दिया है और ये कह दिया सीधे सीधे कि वहां 29 तारीख को जो सरकार है वो अपना बहुमत सिद्ध करे. मित्रों, इस इशू के बारे में हम लोग काफी बातें कर चुके हैं इसीलिए मैं दोहराना ठीक नहीं समझता. कल भी मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल्स में आपको बताया था कि किन किन एंगल से आपको इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि ये मान करके चलिए कि सिविल सर्विस में सिर्फ किताबी ज्ञान आपकी मदद नहीं कर सकते, चाहे आप पूरे के पूरे किताब को अक्षरशः क्यों न रट लें. बहुत जरूरी है कि आप उसका जो अप्लाइड फॉर्म होता है, जो इंप्लीमेंटेशन फॉर्म होता है, उसके बारे में जाने. जैसे कि आर्टिकल्स 356 राष्ट्रपति शासन इसी के अनुच्छेद के माध्यम से लगाया जाता है. अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस तरीके से लग रहा है. मित्र, जो आपका सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर का सिलेबस आप देखिए, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से के साथ साथ पॉलिटी का भी हिस्सा होता है. ये जो मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है, इसको थोड़ा सा आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक संविधान की किताब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, हमारे नियम क्या कहते हैं, व्यवस्थाएं क्या की हैं हमने. और पॉलिटी का मतलब है कि फिर उन नियम कानूनों को, उन व्यवस्थाओं को सही मायने में किस तरीके से व्यवहार में लाया जा रहा है, यानी कि वह कॉन्स्टिट्यूशन का अप्लाइड फॉर्म है. अगर आप मेंस के पेपर्स अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत साफ साफ नजर आ जाएगा कि उसमें सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. हाँ, स्टेट सिविल सर्विस में ऐसा होता है. आपसे नहीं पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं या इनका क्या महत्व है या मौलिक अधिकारों से ये किस प्रकार भिन्न है. अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है. लेकिन जैसा कि पिछले साल ही पूछा गया था कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जो कि समान नागरिकता संहिता को लागू करने में कहीं ना कहीं बाधा बन रही, दोनों के बीच एक द्वंद उत्पन्न हो रहा है, इसको स्पष्ट कीजिए. अब आप देखिए कि वहां राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है लेकिन समान सिविल संहिता की जो बात कर रही है और बात पेपर में किया जा रहा है जिसको लेकर के लगातार अभी डिस्कशन चल रहा है पिछले एक साल से और जबरदस्त बहस चल रही है, तो उसके अप्लाइड फॉर्म को यहां ला करके उससे जोड़ दिया. तो इस तरीके से आपको संविधान और पॉलिटी के अंतर को बहुत अच्छे से समझना होगा और उसी एंगल से आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करनी होगी, तब जाकर के आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. हां, जहां तक प्री के सवाल हैं, प्री के क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस अच्छे तरीके से मालूम है तो प्री में आप उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर दे लेंगे, वहां अप्लाइड फॉर्म की उतनी जरूरत नहीं होती है। हां, अगर आप अप्लाइड फॉर्म में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो कॉमन सेंस का उपयोग करके आप कुछ ऐसे प्रश्नों के भी उत्तर दे सकते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है या जिनके बारे में आपकी जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पढ़ी हुई चीजें काम आएंगी। लेकिन यहां आपकी पढ़ी हुई चीजें केवल एनालिसिस के लिए आपकी मदद करेंगी, वो सीधे सीधे काम नहीं करेंगी। तो मित्रों, आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वो हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी और आज केंद्र सरकार अपील करेगी। अब देखते हैं कि फिर आगे स्थिति क्या बनती है। ये पूरा एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है जब तक कि इसका पटाक्षेप नहीं हो जाता। मित्रों, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी कल के AIR न्यूज की, वो थी लोक सेवा दिवस, ये खासकर जो सिविल सर्विस डे मनाया गया। अब उसमें प्राइम मिनिस्टर ने संबोधन दिया और लगभग हर साल होता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर संबोधित करते हैं क्योंकि वो हमारे देश के CEO हैं, इनका आजकल की भाषा में यूज किया जाने लगा है, हमारे देश के कार्यकारी प्रमुख हैं। और सिविल सर्वेंट जो हैं वो एक तरह से कह लीजिए कि जब वो एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं तो फील्ड में एक तरीके से कार्यकारी प्रमुख होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो पूरे के पूरे देश के जो अलग अलग क्षेत्रों के अपने कार्यकारी प्रमुख हैं उनको राष्ट्र के कार्यकारी प्रमुख संबोधित कर रहे हैं। उसमें मित्रों, मैं आपको दो तीन चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि चूंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं इसीलिए सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी इश्यू होते हैं उन पर आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए, गहरी नजर होनी चाहिए। सिविल सर्विस से संबंधित सीधे सीधे जो क्वेश्चंस होते हैं जनरल स्टडीज के पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं और उसका जो एथिक्स वाला पार्ट होता है वो पेपर 4 में पूछा जाता है। एथिक्स से रिलेटेड, एप्टीट्यूड से रिलेटेड, ये जितनी भी चीजें हैं, मॉरलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर 4 में होते ही होते हैं और ये सिविल सर्विस से भी रिलेटेड होते हैं और पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड होते हैं। साथ ही जो सेकेंड पेपर है जनरल स्टडीज का, उसमें भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको 2014 में पूछा गया यह क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें पूछा गया है क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा है, समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए। हैज द कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बीन द कॉज ऑफ स्लो चेंज इन इंडिया क्रिटिकली एग्जामिन, ये 12.5 नंबर का प्रश्न है। अब आप देखिए कि ये एक सिविल सर्विस से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जी, ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने लंबे समय तक बात की होगी लेकिन उसमें से न्यूज में क्या लिया गया, क्योंकि न्यूज में फिर उन बातों को लिया जाता है जो रिपोर्टर समझता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात जो उन्होंने कही, हेडलाइन भी थी कि ये जो सिविल सर्वेंट है इन्हें परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए, मतलब एक कैटलिस्ट ऑफ चेंज, परिवर्तन का उत्प्रेरक, मतलब समाज में अब जो परिवर्तन होना है सभी फील्ड में, समाज के सभी क्षेत्रों में जिस परिवर्तन की अब हम अपेक्षा कर रहे हैं उन परिवर्तनों को गति देने वाला, उन परिवर्तनों में तेजी लाने वाला, उन परिवर्तनों को करने वाला सिविल सर्विसेज को होना चाहिए। अभी जो मैंने प्रश्न पढ़ा आपने देखा कि उसमें दिया हुआ है कि जो कैडर बेस्ड सिविल सर्विस है ये भारत में अभी धीमे परिवर्तन का कारण है, मतलब जो भारत बहुत धीमे धीमे पर चेंज हो रहा है जबकि उसको अचानक चेंज हो जाना चाहिए था। तो मतलब वो एक तरीके से कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सिविल सर्विसेज हैं, जो कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज हैं जिसमें IAS, IPS और आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आते हैं, ये परिवर्तन को रोक रहे हैं। और यहां प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए, तो ये एक प्रश्न आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूं, इस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी चीज आप इसमें देखिए दोस्तों कि कैसे न्यूज आपकी मदद करती है, न्यूज़पेपर आपकी मदद करते हैं और किस तरीके से आपको अपने दिमाग को लगातार खुला रखना है। अभी इस सिविल सेवा दिवस पर ही देखिए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने कुछ धमकी भरे शब्दों में अपने सिविल सर्वेंट से बात की कि इन चीजों को वो सरल मतलब आसानी से न लें, वो राजनीति न करें और अगर राजनीति करना है तो सर्विस छोड़ करके और आएं और हमारा मुकाबला करें, 10-15 साल तक हम कहीं जाने वाले नहीं। तो एक तरह से उनकी जो भाषा थी वो सिविल सर्वेंट को एक तरह से चुनौती देने की भाषा थी, टकराने जैसी भाषा थी, ऐसी भाषा जो एक तरह से सिविल सर्वेंट को डीमोरलाइज करेगी। लेकिन उसी के साइमल्टेनियसली समानांतर आप देखिए कि मोदी जी की जो भाषा है वो कहते हैं नहीं जी, मुझे सिविल सर्वेंट से कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। तो ये एक मोरल को हाई करने वाली बात है, सिविल सर्वेंट के जो मोरलिटी है, जो उनकी नैतिकता है, या कह लीजिए उनमें उत्साह को बढ़ाने वाली बात है। तो एक प्राइम मिनिस्टर है और एक चीफ मिनिस्टर है, इन दोनों के वक्तव्य आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आप एनालिसिस में यूज कर सकें कि सिविल सर्वेंट जो हैं उनको आप किस रूप में देखते हैं, गवर्नमेंट किस रूप में देखती है, और यदि वो उनसे काम लेना चाहती है तो उस काम लेने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो दो अलग अलग तरीके आपको यहां दिखाई दिए। ठीक दोस्तों, इसी से कुछ दिनों पहले, मुश्किल से दो तीन दिन पहले की बात है कि अब केरल में आपको मालूम है कि एक मंदिर में पटाखों से जो आग लगी उसमें करीब 125-150 लोगों की मौत हो गई है। उस समय चूंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी, लगातार वीआईपीज अब वहां दौरे पर जाने लगे, तो वहां के जो पुलिस के प्रमुख थे उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कि जो वीआईपीज हैं वो प्लीज अभी ना आए क्योंकि उनके आने से यहां बहुत बाधा पहुंचती है मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने, क्योंकि फिर जब वीआईपीज आते हैं तो स्वाभाविक है कि पुलिस को लगना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को लगना पड़ता है, और यहां हम जो राहत कार्य पहुंचा रहे हैं उसमें बाधा आती है। तो पहली बात तो यह है कि यह कहना ही एक सिविल कंडक्ट रूल के अगेंस्ट है, तो उन्होंने लेकिन एक सच्ची बात कही। तो सब अब यहां फिर प्रश्न उठता है कि सिविल कंडक्ट रूल के तहत आप ऐसी बात नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप ऐसी बात नहीं कह रहे हैं तो जो काम आप कर रहे हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको कहना भी जरूरी है, और नहीं कह रहे हैं तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, आपदा प्रबंधन भी आपके सिलेबस में है, तो क्या इन वीआईपीज के दौरों के कारण आपदा प्रबंधन में बाधा आती है? यह भी एक प्रश्न है जिस पर आपको विचार करना होगा। आपदा प्रबंधन वाले में आप ये एक नया इनपुट डाल सकते हैं कि जो राहत पहुंचा रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव वहां राहत पहुंचा रही है, वो मान करके चलती है कि बाधा आती है। इधर जो वीआईपीज होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इसका एक राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी हो जाती है कभी कभी कि अगर कोई पार्टी का नेता नहीं पहुंचता है तो आलोचना के केंद्र में आ जाता है कि देखो इतनी बड़ी घटना घट गई और वो पहुंचा ही नहीं वहां संवेदना व्यक्त करने के लिए। तो एक बड़ी अलग अलग एंगल्स होते हैं एक घटना में, करें तो क्या करें, नहीं करें तो क्या करें, करें तो ये बात उठेगी, नहीं करें तो ये बात उठेगी। तो इन सारी चीजों पर बहुत व्यावहारिक पकड़ आपकी होनी चाहिए, एक तरफा पकड़ से बात नहीं बनेगी, उसकी प्रोस कॉन्स इन सारी चीजों को आपको समझना होगा, बहुत बारीकी के साथ देखना होगा, और तब जाकर के फिर आप एक बहुत ठोस खूब प्रभावशाली उत्तर आप लिखकर आ सकेंगे। तो मित्रों, ये मैंने कुछ बातें आपको AIR न्यूज के माध्यम से कही। जहां तक अखबारों की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आज आपको 5-6 क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। कोई ऐसी क्लिपिंग्स बहुत महत्वपूर्ण, मतलब ऐसी क्लिपिंग्स नहीं है जिसके लिए आपको व्याख्या की जरूरत हो, ये बात अलग है कि अगर वक्त होता तो हम कुछ चीजों पर बात कर सकते थे। तो अखबारों की क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेंगी, वो आप लोग पढ़ लेंगे। अब मैं ईमेल लिखने वाले अपने सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देता हूं, और इन्हीं में से कुछ साथियों के नाम हैं, सुमित शेखर दिल्ली से, संकेत महादिक, दीपक कुमार झा दरभंगा बिहार से, अश्विनी जायसवाल वाराणसी से, अमित खंडेलवाल जयपुर से, मुकेश कुमार झा मधुबनी बिहार से, रविंद्र मुरादाबाद से, भूपेंद्र, सेजुल कुमार और शाह खालिद, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। छुट्टी के बीच के दो दिन हैं, इनका खूब अच्छे तरीके से उपयोग करें, अपने को पुनर्ऊर्जस्वित करने के लिए भी उपयोग करें, और साथ ही साथ जो बचे हुए काम आपके रह गए हैं उनको भी पूरा करने के लिए उपयोग करें। आपकी छुट्टियां बहुत बेहतर तरीके से बीतें, इसके लिए मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और साथ ही अभिवादन, नमस्कार।